ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ചാപ്റ്റർ 4, വേഴ്സ് നമ്പർ 11. അത്യന്ത ഹി സുന്ദർ ശ്ലോക ഹൈ. സമസ്ത പ്രാണിയോ കാ, യാനി ചാഹെ വോ ഭക്ത ഹോ യാ മായാവാദി, സബ്കാ പ്രിയ ശ്ലോക ഹൈ. കൃപയാ ഇസ് അത്യന്ത ഹി അദ്ഭുത ശ്ലോക കോ മേരെ സാഥ് സാഥ് ഉച്ചാരണ കർനെ കാ പ്രയാസ് കീജിയേ. ഭഗവാൻ കഹതേ ഹൈ, ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തി തസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം്, മമ വർത്മാനുവർത്തന്തി മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തി തസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം്, മമ വർത്മാനുവർത്തന്തി മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തി തസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം്, മമ വർത്മാനുവർത്തന്തി മനുഷ്യ पार्थ सर्वशः. शब्दों का अर्थ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये मतलब जो, यथा यानी जिस तरह, माम यानी मेरी, प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं. भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, तांस तथैव भजामि हम, तान मतलब उनको, तथैव उसी तरह निश्चय ही भजामि हम, फल देता हूँ अहम यानी मैं. मम वर्तमान वर्तन्ते, मम माना मेरे, वर्तमानो अर्थात पथ का, अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं, मनुष्य पार्थ सर्वशः, मनुष्य सारे मनुष्य, पार्थ ये प्रथा पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से. अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. अनुवाद, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है. तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है. भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है. लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं. फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं. दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है. कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपनी प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देता है। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीव आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने देश में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने अस्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापिस आ जाते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सत्काम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अर्थात मनुष्य को चाहिए, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में ही होता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैश्यभानु सुत देवी प्रणमामि हरि श्री। वंशः कल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी कौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 9 में बताया जन्म कर्म समे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान ने कहा जो ये जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, जब वो देह त्यागता है तो पुनः इस संसार में फिर नहीं लौटता। और उसके बाद श्लोक नंबर 10 में भगवान ने बताया वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। कि मैं खाली बता नहीं रहा हूँ। भगवान कहते हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है। जब भगवान ने बताया कि पहले ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे लोगों को दिव्य प्रेम भी मिला है और फिर वो जन्म मरण के चक्कर से भी बच गए, तो अर्जुन पूछ रहे हैं तो फिर जब आपकी शरण में आना, आपको समझना, आप की शरण में आना इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन की समस्त कठिनाइयां समाप्त हो जाती है, फिर सब आपकी शरण में क्यों नहीं आते? और या फिर सब लोग को एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है? यानी कि बहुत सारे लोग वापस भी तो संसार में आ रहे हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी शरण में नहीं आते। नहीं आते तो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपकी शरण में आना ही जीव का परम लाभ है। तो फिर यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा यो बजाम्यम, जिस प्रकार जो मेरा भजन करता है मैं भी उसे उसी प्रकार से फल देता हूँ। और आगे कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यानी कि वो भले, अब ये वाला जो इसमें क्या है, पहली लाइन जो है, मैंने अब जैसे कहा कि ये वाला श्लोक मायावादियों को भी प्रिय है और भक्तों को भी प्रिय है, तो जो पहली लाइन है वो भक्तों की प्रिय है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस तथैव बजामि हम। भगवान कहते हैं, तुम जिस प्रकार से मेरे, जिस भाव से मुझे प्रेम करोगे मैं भी वही बनकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम यदि मुझे अपना पुत्र समझोगे तो मैं तुम्हें अपनी माता समझूंगा, यदि अपना मित्र समझोगे तो मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा, यदि तुम मुझे अपना मालिक समझोगे तो तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा और तुम्हें दास की तरह सेवा दूंगा, और यदि तुम मेरे प्रेमी बनोगे तो मैं तुम्हारा प्रीतम बन जाऊंगा। अर्थात जिस प्रकार से हम भगवान के साथ जो संबंध अपना निर्माण करना चाहे वो कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने बता दिया कि ना सिर्फ इस भौतिक जगत में परंतु दिव्य धाम में भी जिस प्रकार का संबंध हम भगवान के साथ रखते हैं वैसा ही संबंध भगवान हमारे साथ निभाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। यानी कि जो शुद्ध भक्त होते ना वही भगवान के संबंध को, अब प्रेम करना है, भगवान कहते हैं तुम जिस भाव से मुझे प्रेम करोगे मैं वैसा हो जाऊं, प्रेम करना है तो उसका एक साकार रूप होना आवश्यक है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को साकार रूप में ही शरण में जाते हैं, तो साकार रूप में उस प्रेम का आनंद हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, है ना। साकार अगर नहीं होगा तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी है जो जीव आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं कृष्ण को भी अपने तेज में लीन करने की उनकी, कृष्ण उनको भी छोड़ते नहीं है। यानी कि जो ये सोचते हैं कि भगवान निराकार है तो उनको अपने तेज में लीन कर देते हैं, परंतु ऐसा होता है कि वो वहां पर आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि आनंद तो आदान प्रदान में होगा। जब व्यक्ति का अस्तित्व ही मिट जाएगा तो भला आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उसे ऐसा लग, जो निर्विशेषवादी होते हैं निराकार ज्योति में लीन हो जाते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। यानी कि उनको वहां पर अच्छा भी नहीं लग रहा होता है निराकार की ज्योति में जब वो लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको वापस से वैकुंठ में नहीं लेने जाता है, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर उसको संसार में भेजा जाता है कि तुम फिर से प्रैक्टिस करो ना भगवान की सेवा की, कोई भी संबंध, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथा, ये जैसा जैसा आप चाहो वैसा भगवान के साथ संबंध निर्माण करो। जब उस संबंध की प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि भगवान का मैं क्या हूँ, भगवान के साथ किस तरह का मुझे रिलेशन अपनाना है, फिर भगवान के धाम में जाते। ये संसार में हम जो भगवान के साथ जो जो संबंध जोड़ते हैं वैकुंठ लोक में, भगवान गौलोक वृंदावन में हमें उसी संबंध के अनुसार हमें भगवान तांस तथैव बजामि मिलते हैं। और ये वाली लाइन भक्तों को बहुत प्यारी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम भगवान के साथ जैसा भी नाता रखेंगे, भले भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन वो हमारे भाव को देखते हुए हमारा बच्चा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारा सखा बन जाएंगे, हमारा मित्र बन जाएंगे, हमारा प्रेमी बन जाएंगे। और सेकेंड वाली लाइन मैंने कहा मायावादी, मायावादियों को अच्छी लगती है। वो कैसे हैं, वो इसका कैसे भाषांतरण करते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मम का मतलब होता है मेरे, वर्तमानो यानी पथ का, अनुवर्तते अनुगमन करते। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्वश। तो अगर हम व्याकरण में देखेंगे तो मनुष्य के साथ सर्वश लगा हुआ है और वर्तमानो वर्तन्ते पथ यानी कि मेरे पथ का अनुसरण, सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुसरण करते। परंतु मायावादी क्या कहते हैं कि आप ये इसके साथ मिलाते हैं, वर्तमानो वर्तन्ते सर्वशा, यानी जो भी जिस भी रास्ते का मार्ग का चयन करता है तो भगवान के पास ही आता है। यानी कि वो क्या कहते हैं कि आप भले किसी भी मार्ग का चयन करो लेकिन आप भगवान को ही प्राप्त करोगे। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी मुझे वो श्लोक तो नहीं याद है परंतु भगवद गीता में भगवान ने कहीं पर ऐसा कहा है कि आप जो भी करोगे अंत में मेरे पास ही आओगे। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, अगर ऐसा होता कि आप जिस भी रास्ते पर जाओ अंत में भगवान को ही प्राप्त करोगे तो भगवान को भगवद गीता बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, है ना। अर्जुन एक कार्य करना चाहता था यानी कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था, परंतु भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए शस्त्र उठाओ और तुम मेरे निमित्त यानी कि निमंत्र मात्र भव स्वे साची, कि तुमको क्या बनना है, निमित्त मात्र बनना है, मेरे आदेशों के अनुसार कार्य करना है। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करके यदि भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तभी कर सकोगे। अपनी इच्छा के अनुसार तुम कुछ भी करके भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? परंतु मायावादी कहते हैं कि जिस भी रास्ते पर हम चलेंगे तो एक अंत में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा होता तो अर्जुन ये क्यों कहते कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है वो आप मुझे बताओ। तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन बता देता हूँ, सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आना है तुम्हें और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी परम गति पर जाने के लिए, एक मेरी शरण में आओ, बाकी कोई भी शरण किसी की भी शरण में तुम जाओगे। भगवान बता दे 9.25 में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादियों का यह तर्क कि आप जिस भी रास्ते पर जाओगे वो हर तरह से निंदनीय है, गलत है, लॉजिकली हिस्टोरिकली ग्रामेटिकली फिलोसफिकली हर तरीके से आप इसको देखोगे तो वो गलत ही होगा। एक अगर आप रास्ता जो पकड़ोगे तो आप उसकी मंजिल एक जैसी थोड़ी होगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मुंबई से यदि आप को कलकत्ता जाना हो तो आप है ना चेन्नई की अगर ट्रेन पकड़ते हो तो कलकत्ता में थोड़ी ना पहुंचोगे। लेकिन मायावादी तर्क करते हैं कि भगवान कोई कलकत्ता या चेन्नई की तरह थोड़ी, भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह पर है, तो फिर हम कोई भी रास्ते पर चलेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। वो फिर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवद गीता 10.41 में कहते हैं, यत् यत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से ही उद्भूत हुई है, यानी कि जो कुछ भी है भगवान से ही निकला है। तो फिर आप किसी के पास जाओगे तो भगवान को ही प्राप्त करोगे। परंतु श्री प्रभुपाद जी इसका बहुत ही सुंदर खंडन करते हुए कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म इज अल्कोहल एंड रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म इज कृष्ण आर नॉट एट द सेम लेवल। यानी कि अब देखो आनंद प्राप्त होता है अल्कोहल से भी, शराब पीने से भी आनंद प्राप्त होता है, और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे भी आनंद मिलता है। परंतु वो आनंद जो हमें शराब पीने से मिलता है, या भले आनंद कृष्ण का है, आनंद कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में नहीं है, लेकिन उसमें, उस चीज में जो आनंद मिल रहा है, वो कभी भी कृष्ण भक्ति के आनंद के बराबर नहीं हो सकता। हमें सही पाथ का अनुगमन करना पड़ेगा कृष्ण के आदेशों के अनुसार। भले ही सारे संसार में जो भी आकर्षण और सौंदर्य सुंदर वस्तुएं हैं, परंतु वो कृष्ण का ही सफुलिंग है, कृष्ण का ही एक अंश है, परंतु किसी को भी पकड़ के आप कृष्ण का आनंद थोड़ी ना ले सकते हो। जैसे पाश्चात्य देश में क्या कहते हैं कि लड़कियां जैसे वो क्या करती है, अपने शरीर का बहुत ज्यादा नुमाइश करती है, शरीर को दिखाती है और कहती है कि क्योंकि ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, इसलिए हम भगवान का दिया हुआ शरीर दिखा रहे हैं। तो फिर मतलब उनको ये बुरा नहीं लगता, लेकिन ये शरीर भगवान ने नहीं दिया है। भले ही संसार में माया जो है उसने इस भगवान की है, परंतु जैसे हम सब जेल में है और जेल का जो ड्रेस होता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं सिलेक्ट करता है, वो तो जेल का जो जेलर होता है वो ही बनाता है। लेकिन चलो मान भी लें कि हमें ये शरीर भगवान ने दिया है, तो भी जो भी ये भौतिक सौंदर्य हमें भगवान के करीब थोड़ी ना ले जाएगा। भगवान के विग्रह का सौंदर्य, जब हम भगवान के नेत्र देखेंगे, भगवान के चरणों के दर्शन करेंगे, भगवान के चरणों में रखी हुई तुलसी को सूंघेंगे और भगवान के मुखारविंद का दर्शन करेंगे, तो यह दर्शन हमें भगवान के समीप ले जाएगा। परंतु यदि हम भौतिक वस्तु या व्यक्तियों की ओर निहारेंगे तो वो हमें भगवान से दूर कर देंगे। तो भले सौंदर्य कृष्ण का दिया हुआ है, परंतु हमें ये तो चयन करना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है और किस सौंदर्य को देखना है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत ही सुंदर मिसाल देते हैं कि एक लिफ्ट हो जो कि पहले फ्लोर पर भी जाती है, दूसरे पर भी जाती है, तीसरे पर, ऐसे करते करते 25 फ्लोर पर भी जाती है, लेकिन जो उस लिफ्ट में बैठता है उसे पहले ये सोचना है कि मुझे कौन से फ्लोर पर उतरना है, और जब वो फ्लोर आ जाए तब उसे ये भी देखना है कि क्या मेरा जहां पर मुझे उतरना है वो फ्लोर आ गया है या अभी तक नहीं आया है। आ गया तो मैं उतरू, वरना नहीं उतरू। उसी तरह भले ब्रह्म रियलाइजेशन वो भी भगवान का ही है, परमात्मा रियलाइजेशन वो भी भगवान का है, और भगवान श्री कृष्ण का साकार रियलाइजेशन भी भगवान का है। हम किस भले उसी में लिफ्ट में बैठे हुए हैं, आगे जाना है तो हमें आगे तक जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी कहीं पर भी लिफ्ट रुके आप उधर उतर जाओ तो वो आपकी मंजिल होगी। भगवान कहते हैं 9.23 में, ये अप्यन्य भक्तो, ये अप अन्य देवता भक्तो, यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं मैं भी मानता हूँ, क्योंकि देवता मुझसे प्रकट हो रहे हैं, तो यजन्ते श्रद्धयान्विता, दूसरे देवताओं के जो भक्त होते हैं और उन्हें श्रद्धा से पूछते हैं, तेपि मामेव कौन्तेय, वो भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, परंतु यजंत्या विधि पूर्वक, वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं, वो कोई सही तरीका नहीं है। यदि आप सही तरीके से कार्य नहीं करोगे, जैसे अगर किसी को खाना खिलाना हो तो आप भले उसी को खिलाओ, लेकिन खाना उसके कान में डाल रहे हो, नाक में डाल रहे हो, आंखों में डाल रहे हो, तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तभी संतुष्ट होगा जब आप उसके मुख में खाना डालोगे। तो भगवान, भले समस्त देवता भगवान के ही अंश हैं, परंतु भगवान का एक साकार स्वरूप है, हमें भगवान को भगवान मानकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, जैसे पहले बता दिया कि जो तत्व से मुझे जानेंगे वो तो मेरे पास ही आएंगे, मामेति सर्वजना, कि वो वापिस से संसार में नहीं जाएंगे, परंतु जो भगवान की जन और कर्म को भौतिक समझेंगे तो भगवान उनका जन और कर्म भौतिक बना देगा। जो भगवान के जन और कर्म को काल्पनिक समझेंगे, भगवान उनके जन और कर्म को काल्पनिक बना देंगे। जो भगवान के जन और कर्म को शाश्वत समझेंगे, वो भगवान उनके जन और कर्म को शाश्वत बना देंगे। और जो भगवान के जन और कर्म को दिव्य समझेंगे, भगवान उसे दिव्यता यानी अपने, भगवान कहते हैं वो मेरे पास आएंगे। जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति। जो दिव्य समझेंगे वो दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तर, जिस स्तर पर आप मेरा भजन करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही चॉइस है कि आप भगवान को भगवान मानकर साकार रूप में पूजो। आपके पास सारी चॉइस है, आपके पास पूरी इच्छा है कि भगवान के साथ आप किस तरह से संबंध जोड़ते हो, क्या समझते हो भगवान को, उसी तरह से भगवान आपको फल देंगे। अब जैसे श्लोक नंबर 10 में भगवान ने बताया था वीतराग भय क्रोधा। अभी हम इस मिसाल से, लिफ्ट वाली मिसाल से अगर इसको देखेंगे, देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन से फ्लोर पे जाना है, अभी हम लिफ्ट में बैठेंगे ही नहीं। वो तो भक्ति करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम क्रोध से लेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे भगवान ने क्या कहा, वीतराग भय, यानी कि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं लिफ्ट में जाना ही नहीं है, लिफ्ट में जाऊंगा पता नहीं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, तो भय हो गया उसको, तो वो बोला कि मुझे बैठना ही नहीं है। एक तो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे किधर जाना है, दूसरा बोलता है मुझे बैठना ही नहीं है। और राग का मतलब है वो लिफ्ट में बैठकर वो क्या सोचता है, अरे कितना अच्छा लिफ्ट है, मुझे यहीं पर बैठना है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहीं पर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है। जब तक आप लिफ्ट में बैठने से पहले ये तय नहीं कर लोगे कि मुझे किस फ्लोर पर उतरना है, तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने अत्यंत ही सुंदर श्लोक लिखा है जो श्रीमद् भागवतम का 2.3.9 में कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी। चाहे आप अकाम हो यानी कि आपके अंदर कोई कामना नहीं है, बिल्कुल निष्काम, कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन सर्व काम होगा, अगर आपके पास समस्त इच्छाएं, आपको भौतिक सुख भी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, स्वर्ग का सुख भी चाहिए, तो भी वा मोक्ष काम, अगर आपको और कोई चीज की इच्छा नहीं, खाली मोक्ष की इच्छा है। देखो तीन चीजें, एक तो मोक्ष की इच्छा, एक तो भौतिक वस्तुओं की इच्छा, और एक किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, तो भी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का ही इच्छुक क्यों ना हो, फिर क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेना। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम का कथन है कि उसे पूरे सामर्थ्य के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति को यदि संक्षिप्त में बताया कलयुग में, श्रवण और कीर्तन जितना कर सकते हो, तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम, जिससे उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसका पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में होता है। सिद्धि क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और तभी प्राप्त हो सकती है जब हम कृष्ण को तत्व से जानकर कृष्ण के साथ अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ेंगे। और भगवान कहते हैं तुम जिस भी संबंध से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारा वही संबंधी बन जाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तथैव बचामि अहम्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।